के संगति में पड़ गए थे। तो भगवान ने देखा या सब बालकों ने देखा, तत्र ददृशुर बाला महासत्वम अवस्थितम, एक महासत्व को देखे। सत्व का अर्थ जीव, जानवर, एक अद्भुत जानवर देखे, महासत्वम विशाल और अवस्थितम। अवस्थितम का अर्थ चल नहीं रहा था, अचल था, समझ गए कि जीव है परंतु अवस्थितम था। तत्र सुहु, तो बच्चे तो एकदम त्रस्त हो गए देखते ही। एक बड़े पर्वत शिखर के समान बड़ा उज्जवल एक पक्षी था, तो देखकर डर ही जाएंगे। तो चोंच भी तो उसी अनुपात में लंबी लंबी होगी, बहुत विशाल था, भयावह था। तो तत्र सुहु, सब बच्चे डर गए, ठिठक गए, खड़े हो गए वहां। अब उनको भागते भी नहीं बनता था और न वहां वो खड़ा रह सकते थे। अब वे भयभीत हुए कि अब क्या करें, हे भगवान अब क्या होगा। अभी वो सोच ही रहे थे तब तक को आ करके हवाक से कृष्ण को खा गया। अभी वो सोच रहे थे, बच्चे डरे हुए थे, वो खा गया। कैसा था वो जीव? वज्र निर्भिन्नम गिरे श्रृंगम इव, भगवान इंद्र के वज्र से मारे हुए पर्वत शिखर के समान होता, बहुत विशाल था। इसका अर्थ ये, भगवान इंद्र ने वज्र मारा था तो पर्वत के शिखर जहां तहां गिर पड़े थे भारी भारी, तो उस तरह से। अब यहाँ किस वस्तु से उपमा दे उसकी? हाथी से उपमा नहीं दे सकते, वो बहुत बड़ा था, इसलिए गिरे श्रृंगम इव, पर्वत शिखर के समान ये उपमा दे रहे। चीव, तो ऐसा लगता था कि आकाश से पर्वत का शिखर गिर गया है। अब ये लोग इस तरह से सोच रहे थे, लेकिन महाराज परीक्षित मानो पूछा कि अरे वो कौन था, आप तो बताइए। वो बच्चों को तो मालूम नहीं था, लेकिन आप तो जानते हैं। तो कहते हैं, सवई बको नाम महान असुरो बकरूप धृत, वह बक नाम का असुर था, पहले से ही नाम उसका बक था, और पुतना को भी बकी कहते हैं, अहो बकी यम जस्तम कालकूट। पुतना का नाम बकी था और इसका भी नाम बक था पहले से ही। इसको जब भगवान ने मारा बक को, तो इसी का बदला चुकाने के लिए अघासुर अजगर बनकर आया, और वह भी खा गया था भगवान। ये सब वर्णन आएगा इसी अध्याय के बाद, अघासुर के वध की कथा। सवई बको नाम, वह बक नाम का असुर था, बहुत महान असुर। महान असुर का अर्थ है कि बहुत बलवान, और बक रूप धृक, वही बक का रूप धारण करके था। अभी बच्चे डरे थे, न भाग रहे थे, न रुक रहे थे, कांप रहे थे, तब तक आगत्य सहसा। सहसा बच्चे ये नहीं समझ रहे थे कि आएगा हमको खा जाएगा। वो तो जैसे बगुला मछली पर झपटता है वैसे ही, वो तो निकट में ही था, कृष्ण को आकर के निगल गए सहसा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सवई बको नाम महान असुरो बकरूप धृक, आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बलि। तो एक तो बलवान था, और उसके तुंड, उसकी चोंचें बड़ी तीक्ष्ण थी, बहुत मोटी मोटी, लंबी लंबी, बहुत भयावह चोंच। सहसा आगत्य, वो अकस्मात आया बड़े वेग से। सहसा का यह अर्थ है कि यदि कृष्ण को यह पता होता, चाहे ब्रज के बालकों को, कि ये हमें खाने दौड़ेगा, तो ये भागे होते, लेकिन वे लोग ये गेस नहीं कर सके, इसलिए सहसा शब्द का प्रयोग किया। चुपचाप बैठा था और तब तक एकाएक वेग से चल करके और आ करके कृष्णम अग्रसत, कृष्ण को ग्रस करके सीधा, जैसे लगा कि एक कवर मारा और कृष्ण को खा गया। बलवान था कृष्णम महाबक ग्रस्तम दृष्टवा रामादयोर भकाह बभूर इंद्रियाणि व बिना प्राणम विचेत। तो और जो बच्चे थे जिनमें राम प्रधान थे, बलराम जी प्रधान थे, वे जब देखे कि कृष्ण को अद्भुत जीव खा गया, बक खा गया, तो वे लोग तो उसी समय ऐसे मूर्छित होकर के गिर पड़े जैसे कि प्राणों के बिना इंद्रियों की दशा हो जाती। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो देखने के लिए हाथ रह जाता है, आंखें रह जाती है, लेकिन कोई काम नहीं करती। तो यद्यपि महाबलवान है, बल के अनंत स्रोत हैं बलराम जी, लेकिन अपने भाई के स्नेह में अकस्मात वे अपने आप को भी भूल गए। तो बेहोश होकर के, बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, वे लोग मूर्छित हो गए कृष्ण के बिना। देखे वो खा गया, सब लोग हाहाकार करने लगे, हाहाकार भी बहुत देर नहीं कर पाए। अब तो उन्हें निश्चित विश्वास हो गया कि कृष्ण पेट में चला गया इस जीव के, अब तो ये समाप्त कर दिया। और कृष्ण इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि उनके बिना हम कैसे रहेंगे। तो कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे, अब ये सोचते ही वे बिल्कुल निष्प्राण जैसे हो गए, प्राणहीन इंद्रियों की तरह वे हो गए, न बोल रहे थे न कुछ भी, गिर पड़े। लेकिन अपने सखाओं की इस दुर्दशा को देखकर भगवान तुरंत ही उसके मुख से बाहर आए। कैसे आए उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्निवात गोपाल सूनु पितरम जगद गुरुः चक्षार्द सद्य तिरुसाक्षतम बकास तुंडे नहं तुम पुनराभ्यपद्यत। जब भगवान को अपने मुख में ले लिया, चोंच से बिल्कुल भीतर ले गया, मुख में कर लिया, पेट में नहीं ले गया, वो तो कृष्ण उसके चोंच के आगे थे ही क्या, वो तो एक कवर थे उसके, तो सोचा कि सीधे निकल जाए। तो लाया जब तालु मूल में, अर्थात कंठ, कंठ के पास लाया, तालु से सटे, तो भगवान अपनी पूर्ण उष्णता को प्रकट कर दिए। कृष्ण उष्ण हो गए, बहुत प्रचंड गर्मी। भगवान कहते हैं सूरज में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वो मेरा एक बहुत बारीक अंश है उसमें। यद्यपि भगवान कबल से भी शीतल हैं, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मिश्री से भी मीठा है भगवान। यहाँ लिखे हैं कृष्णाज होल बॉडी स्वीटर देन सुगर कैंडी। मिश्री से भी भगवान अधिक मीठे हैं, लेकिन उसके लिए महागरम और महातीत लगने लगे, जलने के लिए, लेकिन जाकर के ऐसा जलने लगे जैसे लगा कि लाल लोहा निगल गया। और ऐसा उसका तालु मूल प्रदहत प्रकर्षण दहत ऐसा जलने लगा कि आया करके उगल दिया कृष्ण को और फेंक दिया, ऐसे ऐसे करके वो खा नहीं सका। और बिल्कुल सुरक्षित, कोई दांत तो लगा नहीं था भगवान पर, उसके कोई दांत नहीं लगे थे। चोंच से ऐसे मारा होता तो लगा होता, वो सीधे मुंह बा करके, मुंह फाड़ करके निगल गया, और उसके बाद उगल भी दिया, चक्षर बमन कर दिया। जब बमन कर दिया फिर भी उसका क्रोध नहीं रुका। जब तालु मूल में भगवान जलने लगे तो इसका क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में वो बाहर तो कर दिया, खाया नहीं, लेकिन इसके बाद अपने भयानक चोंच से प्रहार किया कृष्ण पर। देखा कि अक्षतम, कृष्ण का कुछ हुआ नहीं, अक्षत है शरीर में, कोई क्षत भी नहीं, घाव भी नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं, इतना कोमल शरीर, लेकिन कहीं कोई क्षत नहीं था। तब तुंडे न हम तुम पुनराभ्यपद्य, थोड़ा उसके मन में आया कि ये बहुत खतरे की बात है, लेकिन अब निर्णय किया कि अब तुंड से मारूंगा, भीतर तो लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसा लगा कि वो आग का पिंड है, लोहे अग्नि से तप्त लोहा जैसा है। हरिश्वर जी कहते हैं कि आग को कृष्ण वर्तमा कहते हैं, कृष्ण वर्तमा एक शब्द है, अग्नि का नाम है कृष्ण वर्तम। तो भगवान के नाम से अग्नि युक्त है, तो भगवान शायद इसीलिए उन्होंने सोचा कि अग्नि का रास्ता तो मैं हूँ, वर्तम का अर्थ है रास्ता या आश्रय, मैं अग्नि का आश्रय हूँ, अग्नि तो मुझ पर टिका हुआ है, तो जरा अपनी आग प्रकट करके और इसका कंठ जलाओ। तो स्वाभाविक ही कृष्ण उष्ण हो गए। भगवान क्षण भर में चंद्रमा से भी शीतल हो सकते हैं और सूर्य से भी जाददाहक हो सकते हैं। एक ही साथ अनंत उनमें विरुद्ध शक्तियां भरी पड़ी ब्रह्म में, भगवान में सारी शक्तियां एक साथ, वो प्रकट नहीं करते हैं, वो दूसरी बात। तो उगल दिया, अब खाना नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि चोंच से ही मारेंगे धीरे धीरे दूर से ही। अभी भी डर था कि आखिर उसका देह तो इतना प्रचंड गर्म है, कैसे मारूंगा, लेकिन फिर भी जैसे भी हो चोंच से मारने का वो सोचा। तो चोंच को बार बार ऐसे खोल रहा था थोड़ी दूर से ही, अब भय लगने लगा उसको। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण उसके दोनों चोंच को दौड़ करके दोनों हाथ से पकड़ करके और बच्चों के देखते देखते फाड़ कर दो टुकड़े कर, ऊपर नीचे चोंच होता है, ऐसे फाड़ दिए बिल्कुल। और देखने में उतने छोटे बच्चा थे और पहाड़ की तरह उसके ऊंचे चोंच को फाड़ दिए, फाड़ करके दोनों टुकड़ों को इधर उधर फेंक दिए, पूरा शरीर ही फट गया, केवल चोंच नहीं। चोंच से चालू किए तो दो टुकड़े में सब्जी की तरह बिल्कुल अलग फेंक दिए। बच्चे तो बहुत खुश हुए ये देख करके। तो इस पर है नरेश्वर जी लिखे हैं, भगवान उसके मुख में क्यों चले गए और फिर क्यों निकल आए और क्यों उसका चोंच फाड़ दिए और तरह से क्यों नहीं मारे। तो भगवान ने ये सोचा कि मैं जिसका स्तन पिया हूँ वह मेरी माँ है, पुतना, माँ बना भी लिए थे उसको, और मेरे माँ का ये भाई है, ये मामा है। तो मामा शब्द आते ही इनको कंस की याद आ गई और इसी रोष में चीर दिए, ये मामा ऐसे सब बेकार है भी। एक अर्थ करते कि मामा के भाव आते ही बस कंस की याद आ गई, और कंस सखा में था भी। आगे इस श्लोक में कहा गया है कि तमा पतंतम सनिगृह तुंड और दुर्भ्यम बकम कंस सखम सताम पति। कृष्ण तो भक्तों के पति हैं, रक्षक हैं, और यह बकासुर कंस सखम, कंस का सखा। तो भगवान ने इस तरह क्रोध में उसके चोंच को चीर दिया। एक अर्थ बताते हैं विरणवत, कोमल सीख की तरह चीर दिया, मूंज की तरह चीर दिया, या बांस, कोमल बांस की तरह चीर दिया भगवान। तो बांस की तरह चीर दिया, इसका क्या अर्थ है? भगवान ने विचार किया कि कंस का कोई संबंधी मेरा शत्रु है, तो उसको बांस की तरह चीर कर भगवान ने कहा कि मैं पूरे वंश को समाप्त करने वाला हूँ, केवल बकासुर को ही नहीं, पूरा वंश खत्म करूंगा, करूं कंस निर्वंश मेट दऊ नाम निशानी रे। तो भगवान शायद इसकी सूचना दे रहे हैं कि वंश पूरा समाप्त करूंगा, ये चीर करके इस तरह से दिखा रहे। और भी कई कारण लिखे हैं, पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया, पश्यत्सु बालेषु, बच्चों के देखते देखते और खेल खेल में ददार फाड़ दिए। लीलया कोई प्रयास नहीं किए, विरणवत यहाँ लिखा गया है, मुदा भो विरणवत दिवोक्षाम, और देवता लोग देख रहे थे, देवताओं का आनंद बढ़ाते हुए विरणवत ददार, कोमल बांस की तरह, कोमल घास की तरह चीर दिए, फाड़ दिए। तो देवताओं का बहुत आनंद बढ़ा, बकासुर के वध से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तदा बकारिम सुरलोकवासिनः समाकिरण नंदन मल्लिकादिभिः समीदिरे चानक शंख संस्तवैर तद्वीक्ष गोपाल सुता विसिस्मिरे। उसमें सुरलोक वासिना, देवलोक के वासी मतलब देवगण, नंदन बन के मालती आदि पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मालती का पुष्प बहुत प्रिय है, वो देवता जानते थे कि भगवान को ये प्रिय है, तो नंदन वन में जो मालती पुष्प हैं, लताएं हैं, उनका फूल लेकर के तैयार थे या तत्काल में ही ला करके बरसाने लगे। तो स्वर्ग में जो फूल है इस पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं और वजन में बिल्कुल हल्का होते हैं। लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और पुष्पों की वर्षा ही नहीं सम ईडिरे प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। आनक शंख संस्तवई, नगाड़ा बजाने लगे, शंख बजाने लगे और सुंदर स्तुति करने लगे देवता लोग। अब इधर उसका मरना देख करके कृष्ण का पेट से बाहर आना और उसको चीर देना और ऊपर से देवताओं का पुष्प बरसने लगा और आवाज आने लगी, तो गोपाल सुता वो गोपों के बच्चे बड़े विस्मय में हो गए, ये क्या हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल विस्मित थे कि फूल बरसने लगा ऊपर से। वो देवता का भी मतलब नहीं जानते होंगे, स्वर्ग आदि का भी उनको ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है इस तरह की बात, तो विशेष मिले वो सब विस्मय में पड़ गए। वे नहीं जानते थे कृष्ण भगवान है चाहे ये है वो, इसलिए विस्मय में पड़े। यह विस्मय आनंद जनित हुआ कि हमारे सखा के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है और सफल हो गया, ये जी गया वो। हम तो समझते थे कि मर गया, उसके पेट में चला गया, लेकिन आ गया। तो अपने सखा के इस विजय से और ऊपर से इतना बाजा बज रहा था, जय जय बोला जा रहा था और खास करके बकारी किस तरह कृष्ण ने बकासुर का वध किया, किस तरह उसके पेट से आ गए बाहर, उसके कंठ से बाहर आ गए, यही सब देवता लोग गाने लगे। देवता तो क्षण भर में कोई भी बात कविता में गीत में गा सकते हैं, तो बकारी का गीत गाने लगे, अर्थात तत्काल में जो लीला हुई थी उसी को गाने लगे। तो बच्चे बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्नता से वे विस्मय में डूबे थे, आश्चर्य हो रहा था। एक आनंद का विस्मय होता है, एक दुख का विस्मय होता है, तो आनंद का विस्मय हुआ। और मुक्तम बकाश्याद उपलब्ध बालका, बकाश्याद बक के आश्य से मुख से कृष्ण को मुक्त देखकर, निकला हुआ देख करके आ करके आलिंगन करने लगे और फिर पुनः वे खड़े हो गए, ऐसे जैसे लगा कि मरे हुए शरीर में फिर प्राण आ गया। इतना जल्दी खड़े हुए कृष्ण को देख करके कि लगा कि अकस्मात प्राण आ गए शरीर में। और स्थानागतम तम परिरभ्य निर्भरता प्रणीय वत्सन ब्रजमेत तज्जग, जहां बेहोश होकर गिरे थे वहां निकलकर कृष्ण आ गए बक के मुख से। तब वे उनको प्रेम से स्नेह से आलिंगन में ले लिए और बहुत प्रसन्न हुए। सब बच्चे आलिंगन करने लगे, कृष्ण देखने लगे कि शरीर पर कहीं कोई खरोच तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। चोंच से मारा था, ले गया था भीतर, तो कटने का डर था ही, लेकिन कहीं कोई खून नहीं निकल रहा था, कहीं कोई सूजन भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक था। तो बलराम जी आलिंगन में लिए, सब बच्चे आलिंगन में लिए। अब क्या था, प्रणीय वत्सान, अब वो बछड़ा सब हाके और भागे चल दी ब्रज में घर। प्रणीय वत्सान ब्रजमित तज्जग, प्रणीय मैंने ले करके, अब इधर उधर जो बछड़े थे तुरंत उनको लियो, तो तट पर ही थे, ले करके जल्दी जल्दी भागे, अब कहे को चराने जाए। और ब्रजम एक ब्रज में आकर के और तब जगु उसको गाने लगे। गाने का मतलब है कि बड़े आश्चर्य से और कई बार बताने लगे कि अरे एक ऐसा जीव था, बगुला जैसा था, आया कृष्ण को खा गया था, भगवान कैसे निकाल दिए, मुंह से निकल आया, ये हुआ हुआ। अथवा श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी अर्थ करते हैं कि जगु, वे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बच्चे हैं, वे तुरंत कविता में गाने लगे इस लीला को, कैसे कृष्ण को ग्रस्त लिया बक और ऐसे मुक्त हो गया, ये हो गया वो हो गया। बच्चे ये प्रथम बार जाकर के घटना सुना रहे, इस प्रकार की एक विशद घटना हुई है। बच्चे आकर तब जगु, जगु का अर्थ होता है गाना, गाए, गाए का मतलब यह है कि कई बार इसको कहे, एक तो ये अर्थ है और दूसरी बात है कि उच्च स्वर से कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे जैसे गा रहे हैं अथवा सचमुच गीत और कविता में गाने लगे, कृष्ण का मुक्त होना ये होना। सब घर घर में लगे बताने गाने लगे तो श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्यश्चात प्रियार्द्रता। तो कृष्ण भी लौटे थे साथ में, तो इसको सुन करके गोप और गोपी सब जहाँ के तहाँ झुंड में जुट गए थे, सुन रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। तो आज ये हुआ तो निकट की ही घटना थी, ब्रज के निकट बहुत दूर नहीं। तो गोप और गोपी सब बड़े विस्मित हुए, अति प्रिया देता है, अपने प्रिय के प्रति कृष्ण के प्रति सबका बड़ा आदर था, स्नेह था। तो वे सब ऐसा मानने लगे कि कृष्ण मर करके आ गया, दूसरे लोक में जाकर के आ गया। प्रत्यागतम योत्सुक्यात अक्षमता त्रिषित क्षण, तो सबकी आंखें त्रिषित थी, प्यासी थी, अपने प्यारे कृष्ण को त्रिषित प्यासी आंखों से देख रहे थे सब, गोपी गोप सब पहले आलिंगन में लिए सब, और इसके बाद प्रेम से सभी देखने लगे त्रिषित क्षण, कृष्ण को देखने में उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी, प्यासी आंखों से ही देख रहे थे। ऐसा व्यक्ति जिसको जल पिलाइए और पिलाने पर भी प्यास न जाए और पीता रहे, इस तरह से कृष्ण को देखने लगे स्नेह से, और स्नेह से देख रहे हैं बहुत ध्यान से कि शरीर में कहीं कोई कट छट तो नहीं गया है, ये तो नहीं हुआ है, बहुत प्रेम से देख रहे हैं। और ऐसा मान रहे थे कि कृष्ण का पुनर्जीवन हुआ है, प्रत्यय आगतम मर करके आ गया। जब बच्चे कहे कि वो बिल्कुल पेट में ले लिया, खा गया और कैसे निकल आया, भगवान की कृपा अद्भुत है। तो सब बड़े विस्मित हुए, जहां तहां बात करने लगी कैसे हो गया, देखो ऐसी ऐसी विपत्ति आ रही है इस बच्चे पर, लेकिन भगवान नारायण बचा रहे हैं। तो आपस में गोप क्या कहते हैं, वो तीन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन। अहो अस्य बालस्य, इस बच्चे की बहुत सी मृत्युएं हुई, मृत्यु का मतलब मृत्यु के कारण आए, ऐसे ऐसे कारण आए जो मृत्यु करने में समर्थ, बहुत बार इस बच्चे की मृत्यु के कारण आए, लेकिन अप्यासित विप्रियम पेशन, लेकिन जो मारने आए उनका ही अप्रिय हो गया, वही मर गए, कोई ऐसा नहीं हुआ जो भाग गया हो यहाँ से आकर के। देखो भगवान की दया, जो मारने आए वही मर गए, और बकासुर भी अभी मर गया, वो यह नहीं कि उड़ करके भाग जाए कृष्ण के खतरा से, मारने आया मर गया वही। तो अप्यासित विप्रियम पेशम, जो कृष्ण को मारने आए वही मर गए, क्या कारण था, कृतम पूर्वम जतो भयम, क्योंकि उन लोगों ने पूर्व जन्मों में दूसरे जीवों को भय दिया होगा, सताया होगा, नहीं तो बच्चा से टकरा करके वो कैसे मरते, इसका मतलब अपने कर्मों से मर गए, बच्चा नहीं मारा, ये उनकी भावना नहीं हो सकती थी कि कृष्ण मारा है, बच गया भगवान की कृपा से, तो क्या भगवान की कृपा से मार नहीं सकता था, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि वे जितने भी राक्षस आए असुर आए सब अपने कर्मों से मरे, पूर्व जन्मों में उन्होंने भय दिया होगा, दुख दिया होगा, सताया होगा प्राणियों को, तो ब्रह्मा जी ने लिखा होगा कि इस दिन इस जगह पर वो मर जाए, तो अपने बुरे कर्मों के कारण वे मरे। कोई व्यक्ति कहीं आवे यात्रा करने के लिए, मान लीजिए ब्रज में कोई आया है और बिल्कुल युवक शरीर है, सब कुछ है, और अकस्मात मृत्यु हो जाए, तो आदमी सोचेगा ना कि भाई क्या कारण है, कोई रोग था, क्या था, कैसे मरा। वो लोग तो आते थे ब्रज में, ब्रज में कोई उनको नहीं मारा, सब बच्चे तो बछड़े चरा रहे थे, पानी पी रहे थे, वे क्यों मारने जाए, उनका कोई भय नहीं था, लेकिन आया करके वही मर जा रहे हैं। तो दूसरों को दुख दिया है, पाप किया, उस पाप से सब मर जा रहे हैं। और कोई बच्चा आकर कहे कि कृष्ण ने उसकी चोंच फाड़ दिया, ये किया वो किया, तो वो कहते नहीं नहीं वो सब अपने पाप से मर गए। बच्चे में ऐसी शक्ति कहाँ, वे कभी भी ये मान नहीं मानते थे कृष्ण ने कुछ किया है, और ऐसे स्वाभाविक ढंग से सब होती थी क्रियाएं, वे कैसे माने। जिस बच्चे को बकासुर खा गया, क्या ये कोई मान सकता है कि वो बच्चा उसकी चोंच फाड़ देगा, बाहर कैसे आ गया अभी लोगों को तो पता नहीं था, सब पूछते होंगे बाद में कि बाहर कैसे आ गया, क्या हुआ, कैसे उल्टी कर दिया तुम्हारी, तो भगवान बताते होंगे पता नहीं क्या बात। वो लगा कि उसका मुंह जल गया तो इतना ही बताते होंगे, ये लोग नहीं देखते, देखे थे उगले हुए। जब मुख से बाहर आकर के भगवान इनके स्थान पर पहुंचे, स्थानागतम लिखा गया, जहां वे गिरे हुए थे बच्चे, वहां जब कृष्ण आए तब वे देखे, मुख से निकलते हुए नहीं देखे। तो यह एक बहुत आश्चर्य की बात है, परंतु गोप लोग अब इस घटना पर अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे थे कि बहुत से मृत्यु के कारण आए, बहुत राक्षस आए, असुर आए, लेकिन सब मरते जा रहे हैं। उनका लिखा था भाग्य में, कर्म में, कि यही मरेंगे, ऐसे मरेंगे, बहुत सताए होंगे दूसरों को, इसलिए मर गए। अथाप्यभिभवन्ते नम नैवते घोर दर्शना जिघांसैन मासाद नश्यन्त अग्नौ पतंगवत। देखो ऐसे ऐसे घोर दर्शन असुर आए ब्रज में, जिनके दर्शन से ही बच्चों का हार्ट अटैक हो सकता है। ये अर्थ है घोर दर्शन का, ये अर्थ है कि जिनको देखते ही सयाना आदमी मर जाएगा, इतना विकट रूप था उन लोगों का। पर वे कर्म किए, बच्चे को मारने का प्रयास किए, फिर भी बच्चा नहीं मरा। अथापि नैव अभिभवन्ति एनम, इस बच्चे को वे परास्त नहीं कर पाए, नहीं अभिभूत कर पाए, नहीं मार पाए, जिनका दर्शन ही काफी था बच्चे को मारने के लिए, और वे अपना पूरा कर्म किए मारने का, फिर भी नहीं मार पाए, और मारने के नियत से आए थे। जिघांसया एनम आसाद्य, इसको मारने के लिए यहाँ वे आते हैं, लेकिन ऐसे नष्ट हो जाते हैं, नश्यन्ति, जैसे अग्नौ पतंगवत, जैसे अग्नि में फतिंगा की तरह आकर के खत्म हो जाते। क्या कृपा है भगवान नारायण की, सब लोग भगवान का भजन करो, भजन के प्रभाव से बच्चा बच रहा है, ये सोच रहे थे। पर ऐसे नष्ट हो रहे हैं, ऐसे बहुत से असुर आए और अग्नि एक है, तो एक जगह पर अग्नि है लेकिन हजारों पतंग आया करके भस्म होते रहे। एनम यहाँ ये है, और नश्यन्ति बहुवचन में, इसके पास आते हैं, इसे सटते हैं, आते हैं, और वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नौ पतंग, जैसे अग्नि में फतिंगे नष्ट हो जाते हैं। ये अद्भुत बात, ये विस्मित होकर कह रहे हैं, देखो इसके पास आना कि मरना तब पूतना आई मर गई, अब फिर बाद में आवृत्ति होगी यहाँ कथा में, लेकिन वे लोग तो रोज यही कहते रहते, देखो पूतना आई। अब इस घटना पर कौन व्यक्ति नहीं याद कर रहा होगा, पूतना, तृणावर्त, सकट, वृक्षों का गिरना, ये सब रिपीटिशन हजारों बार करते रहते थे, रात दिन में लोग यही करते थे। केवल कृष्ण की वार्ता, केवल कृष्ण की वार्ता, वो भी ताजा खबर है, बिल्कुल ताजा है, ताजा। अभी बच्चे आकर के कहे बिल्कुल फ्रेश खबर, अभी मार करके आया है, चलो मर गया है, और शरीर वहीं पड़ा ही होगा, कई गोप साहस करके देखने गए होंगे, चलो चलो झूठ बोलते हैं, सही कहते हैं, चलो चलो देखें देखें देखें, जाकर देखते हैं, तो ऐसे तब लोग आया करके आपस में बात करते, तब कहते हैं बच्चा बच क्यों रहा है, तो कहते हैं अहो ब्रह्म विदाम वाचो न सत्य संति कर ही चेत गर्गो जदाह भगवान अनुभावी तथैव तत्। सही है, भगवान के उपासक या वेद के ज्ञानी वेद वेत्ता गण और भगवान के भक्त विद्वान जो कहते हैं उनकी बातें कभी असत्य नहीं हो सकती। देखो भगवान सर्वज्ञ गर्गाचार्य ने जो कहा था, जैसे कहा था वैसे बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा था कि नारायण समो गुण, इस ये बच्चा नारायण के समान गुणवान है, गुणों में नारायण के समान है, देखो बिल्कुल सत्य हो गया। एक प्रश्न होता है कि क्या नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के वाक्यों को कह दिया था, तो श्रील जीव गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि नंद बाबा इतने सरल चित्त के थे कि ब्रजवासी हमेशा पूछते रहते थे बच्चे के विषय में, तो उन्होंने कह दिया था, सीधा उत्तर दे दिया था, ऐसा वे लिखे हैं, कह दिए थे कुछ लोगों से, तो बात फैल गई थी। नामकरण एकांत में हुआ था, गोशाला में भीतर, लेकिन बाद में नंद बाबा इतने सीधे साधे सरल हृदय के हैं कि वे अपने स्वजनों से नहीं छिपा पाए, उन्होंने कह दिया। सब बच्चे के विषय में पूछते रहते थे तो वे क्या कहे, उन्होंने सीधा उद्धृत कर दिया कि श्रीपद गर्गाचार्य जी ने ये कहा था। तो अब सब लोग कहते हैं देखो गर्गाचार्य जी जो कहे वो असत्य नहीं हो सकता, जो कोई भी भगवान का भक्त ब्रह्म विदाम जो ब्रह्म को जानता है विष्णु को जानता है तो वैष्णव यहाँ अर्थ होगा, वैष्णवों का या वेद के ज्ञाताओं का वचन असत्य न भवंती, कभी असत्य नहीं हो सकता। जदा गर्गो भगवान, गर्गो जदा भगवान जो सर्वज्ञ, गर्गाचार्य जी ने कहा था अनुभावी, वही हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और इसका एक और भी अर्थ है जैसा पहले कहा गया त्रिणार्थ बाद में कि ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। जो ब्रज में कुछ ब्राह्मण थे वे कृष्ण को कहते थे चिरंजीवी भव, निरोग भव, स्वस्थ भव, सुखी भव, तो ये सब गोप गोपी यही मानते हैं कि ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसीलिए बच्चा स्वस्थ है, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इनको पता नहीं था कि ब्राह्मणों को यही आशीर्वाद देता है, चाहे ब्रह्मा को, सबको इसकी कृपा से ब्राह्मणों के पति ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ये करते हैं। अब यही अपना अपना विचार था और सब बोलते रहते थे इस कारण से बच्चा नहीं मरा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और गर्गाचार्य जी को भी करें उन्होंने आशीर्वाद दिया था, एक प्रकार से उन्होंने कहा क्या वो आशीर्वाद दिए थे जो नारायण के समान गुण में होगा, नारयो भी भवन, जो इससे प्रेम करेगा उसको शत्रु पराभूत नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंतिम श्लोक जब याद पड़ता था तो कहते थे नंद महाराज बच्चे को बहुत बचा कर रखना चाहिए, वही गोप सब कहते कहते गुणों में नारायण के समान है। उसका वास्तविक अर्थ ये था कि नारायण ही गुणों में इसके समान हो सकते हैं और कोई नहीं, उसका वास्तविक अर्थ यह था। परंतु वे लोग इसी को बहुत मान रहे हैं गुणों में नारायण के समान है, परंतु फिर भी कहते हैं बहुत बचा करके रखना है, ये करके रखना है, वो करके रखना है, बच्चों को अकेले नहीं भेजना, बछड़ा चराने के लिए कोई सयाना गोप जाए धनुष बाण ले करके और रक्षा करते हो, ऐसे अकेले भेजना ठीक नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर भूल जाते थे जैसे तो कृष्ण के आग्रह से भूल जाते थे, क्योंकि सयाने लोग रहेंगे तो कृष्ण खेलने में उतना आनंद नहीं ले पाएंगे, अंत कृष्ण की रुचि का पालन करते थे, तो यही सब वे कहने लगते थे। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविंदन भव वेदनाम। इस प्रकार नंद आदि गोप रात दिन केवल कृष्ण राम की कथा कहते रहते थे, सुनते रहे, सर्वदा उन्हीं की बात। कथा का अर्थ ऐसे नहीं कि आयोजन कर कर केवल करते थे, बातचीत को भी कथा कहते हैं, से बंगला में इसको कथा कहते, कोई बात कर रहा है तो कहते हैं की कथा बोलते, क्या कथा कर रहे है ना, कहते हैं ना। इधर उत्तर भारत में कथा कहा जाए तो लोग समझेंगे कि कथा का मतलब बैठ कर कुछ लोग सुन रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन साधारण बातचीत को भी कथा ही कहते हैं। तो ये लोग राम कृष्ण के विषय में चाहे 10 आदमी हो, 1000 आदमी हो, 2 आदमी हो, बस यही चर्चा चलती रहती है। और इस कारण से कथा के प्रभाव से न अभिंदन भव वेदनाम, संसार के दुख का उन्हें कोई पता भी नहीं रहता था, अनुभव होने की तो बात दूर रहे, कुछ भी पता नहीं था संसार का दुख क्या। वैसे तो संसार का दुख उनको है ही नहीं, वो तो अपराकृत धरातल पर हैं, लेकिन इस तरह से भी आनंद में रहते थे, सुख में रहते थे। कोई अधिभौतिक अधिदैविक या आध्यात्मिक कोई दुख नहीं होता था। कथा से इस विषय पर श्रील प्रभुपाद जी प्रपोर्ट लिखते हैं, थोड़ा पढ़ा जाए। प्रपोर्ट
हियर इज एन इंस्ट्रक्शन अबाउट द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग और डिस्कसिंग द कृष्ण कथा दैट अपीयर्स इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में जो कृष्ण कथा है उसके अध्ययन करने से या डिस्कशन करने से क्या रिजल्ट मिलता है ये यहाँ बताया गया, इस श्लोक में बताया जा रहा है। शब्द हृदय वृद्ध पित्र कृत भी शुश्रूषण प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, शब्द हृदय अवरुद्ध पित्र कृत भी शुश्रूषण। नंद महाराज एंड यशोदा इन वृंदावन अपीयर लाइक आइडेंटिटी पर्सन्स ऑफ दिस मैटीरियल वर्ल्ड बट दे नेवर फेल्ट द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल्दो दे समटाइम्स मेक मेनी डेंजरस सिचुएशंस क्रिएटेड बाय द डीमंस। दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इफ वी फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ नंद महाराज एंड द गोपास we can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. Anarthopasamam sakshat bhakti yoga madhokshaje lokasya janato vidvans chakre satvat sanghitam। हम समझते हैं इसका अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। व्यास देव हैज गिवेन दिस लिटरेचर so that everyone may understand one's transcendental position simply by discussing Bhagavat Katha. Special Prabhupada Jyotir Rahe, Bhagavat Katha. Even at the present moment, everyone, everywhere can be happy and free from material tribulations by following Srimad Bhagavatam. There is no need of austerities and finances, which in this age are very difficult to perform. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore declared,
Sarvatma Smapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. By our Krishna consciousness movement, we are trying to distribute Srimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna consciousness movement by chanting and hearing about the activities of Krishna and be free from all material tribulations. So, sab dukh se mukt hone ke liye Srimad Bhagavatam hai aur Bhagwan ka naam hai. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. ये सब केवल कृष्ण बलराम की कथा में लगे रहते थे। कोई प्लान बना करके सप्ताह आदि नहीं करते थे, रात दिन केवल उन्हीं के विषय में बात करते थे, गाते थे, सोचते थे और इस कारण से उन्हें कोई दुख नहीं। जबकि दुखद स्थितियां बहुत आती रहती थी लेकिन भगवान की कथा से बात से दुख नहीं होता था। एवं विहार ही कौमार ही कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलायन सेतु बंधर मरकटोत्प्लवनादि भी। इस प्रकार कौमार ही बिहार ही कुमार अवस्था में 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की अवस्था में बच्चे जो लीला करते हैं प्राय उन सब लीलाओं के द्वारा क्रीड़ाओं के द्वारा कृष्ण और बलराम अपनी कुमारावस्था को पूरा किए ब्रज में। यदि कुमार अवस्था में की गई लीला बाद में भी कही जाएगी, अभी 3 अध्याय में आगे है, परंतु यहाँ पर एक प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं। एवं इस प्रकार कौमार ही बिहार ही ब्रजे कौमारम जहतु कुमारावस्था को छोड़ दिए बिता दिए, कहने का मतलब ये है यद्यपि श्री कृष्ण की कुमारावस्था पूर्ण नहीं हुई थी लेकिन वो 3-4 वर्ष में ही 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगने लगे दोनों भाई। कौमार को बिता दिए, कौमार बिहार से, कौमार बिहार मतलब कुमारावस्था के उचित बिहार, कौन कौन नीलायन ही कुछ बिहार बता रहे हैं। नीलायन नीलायन का अर्थ है नीलीन हो जाना, छिपना, अर्थात आंख मिचौनी खेलना। प्राय छिपते थे, कोई बच्चा खोजता था कहीं वृक्ष के कोनर में छिपना, घर में छिपना, झुरमुट में, तो लुका छिपी का खेल इसको हम लोग कहते। नीलायन सब बहुवचन में दिया गया, एक दिन का बिहार नहीं है और एक ही बार का नहीं है, एक दिन में हजारों प्रकार से छिपते थे और खोजते थे। यही भगवान है, भगवान तो आनंद में है, उनको क्या चिंता है किसी बात का, तो वो केवल खेलते बच्चों के साथ। नीलाय नहीं और सेतु बंध है, कभी कभी सेतु बांधते थे छोटे छोटे नालों पर, बड़ी बड़ी नदियों पर नहीं, छोटे छोटे जो झरने गिरते थे ब्रज में पानी के, उस पर बांध बनाते थे, बच्चे जय श्री राम बोलते हुए थोड़ा छोटा छोटा धुंधा लाते थे कि मतलब हम जैसे भगवान राम ने बांधा था सेतु वैसे बांध रहे, और बच्चे हनुमान जी का बानरों का पाठ करते, थोड़ा सा अगर वो आधा किलो भी उठा कर लाते थे तो जय श्री राम और कह करके वो अपने समाज से भारी पर्वत उठा कर लाते थे। और ये भी सेतु बंधा भी बहुवचन में है, इसलिए प्रतिदिन कई प्रकार से सेतु बंधन चलता ही रहता है, सीख रहे थे। हरीश्वरी जी कहते हैं कि आदत है राम अवतार में सेतु बंधन करने की, इसलिए यहाँ कर रहे थे।
अब यहाँ कोई समुद्र नहीं मिल रहा है, नहीं तो वहाँ भी कर ही देते, बांध बनाते रहते। सेतु बंध है मरकटोत्प्लवनाद भी, मरकट उत्प्लावन का अर्थ है कि एक शाखा से दूसरे शाखा पर झूलना और चौक कर चले जाना, उछल कर चले जाना या झूलना बानर की तरह इधर उधर, इसको मरकट उत्प्लावन कर।
सर्वदा कहीं भी किसी वृक्ष डाल में झूल जाना, उधर जाना, कूदना, फानना, इन सब बिहार के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी कुमार अवस्था को ब्रज में पूरा किए। हरे कृष्ण जय श्री प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच क्वचिद् वनाशाय मनो दधद् व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरिः अध्याय में अघासुर के वध की कथा है। यह बकी बकानुजह इसके लिए कहा गया, बकासुर का और पूतना का छोटा भाई था अघासुर। नाम बहुत संक्षेप में थे इनके, बकी बक अघ, छोटा छोटा नाम था और बहुत भयंकर दैत्य थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते क्वचित किसी समय भगवान बहुत सवेरे जग गए, जब वे बछड़ा चला रहे थे उस समय की लीला है, कौमार अवस्था की ही लीला है। अभी 3.5-4 वर्ष के थे, 5 वर्ष से नीचे के ही थे भीतर के, तो उस समय की बात है। एक दिन श्री कृष्ण बहुत सवेरे जग गए, प्रातः समुत्थाय, प्रतिदिन वे बाद में जगते थे, चूंकि बच्चा थे अतः बाद में जगते थे, और गौएं दूध पिला लेती थी बच्चों को, बछड़ों को, दूध का दोहन हो जाता था गौओं का, इसके बाद बछड़े जाते थे। परंतु एक दिन कृष्ण के मन में हुआ कि जल्दी बछड़े ले चलें और गौएं बाद में आएंगी, वहीं अड़ार कहते हैं हम लोग भोजपुरी में, बाहर आएंगी सिवान में, वहीं पर गौएं दुही जाएंगी बाद में, और भोर में ही बछड़े लेकर चलना चाहे। और वनाशाय, वनाश अस का अर्थ होता है भोजन, वन वनाशाय, वनाश अस का अर्थ होता है भोजन, वन में ही भोजन करेंगे ये विचार करके वे चल दिए। तो उनकी माँ जशोदा और रोहिणी जी सवेरे सवेरे ही उठ करके, जब वो जाने जाने करने लगे भोर में, तो उठ करके बहुत सी सामग्रियां बना करके और बांध करके दी, और छींके में बहुत सुंदर छींका, छींका समझते हैं ना, छींके में एक सुंदर मेटा में, सुंदर मिट्टी के बर्तन में जिसमें दही जमाया गया था बहुत सुंदर, उसको छींके पर दी। स्टील आदि के बर्तन में नहीं कृष्ण खाते थे, मिट्टी के बर्तन में ले गए, और भात ताजा ताजा, और इसके साथ ही मिर्च, अदरक, नींबू आदि का अचार भी बांध दिए खाने के लिए। दही भात मुख्य था, इसके साथ और भी मिठाइयां थी। ब्रज में बहुत सब्जी फब्जी नहीं बनती थी, उसका कोई बहुत उल्लेख नहीं। दूध दही घी इतना था कि उसी से सब कुछ हो जाता था। तो बहुत सुंदर तरह से वे भोजन लिए, बनाशाय वन में भोजन करने के लिए, वन भोज कहते हैं ना पिकनिक, बच्चे अपने घर से बाहर वन में खाने में बड़ा आनंद मानते हैं। अब तो 1 जनवरी को ही अपना सबसे बड़ा पर्व मान लिए लोग, जहाँ तहाँ बनाकर घर से बाहर खाते हैं। तो बनाना तो नहीं था, घर का ही भोजन था, लेकिन बनाशाय वन में भोजन करने का विचार करके मनोदधत, बनाशाय मनोदधत, कृष्ण ने मन में बांध लिया, सोच लिया कि आज वन में खाना है। तो अभी बच्चों के जगने का समय नहीं हुआ था, परंतु श्री कृष्ण अपने मन में वनभोज की बात सोच ली, अतः वे श्रृंग रवेण चारुणा, चारु का अर्थ है सुंदर, सुंदर श्रृंग ध्वनि से बच्चों के घर घर पर जा जा करके जगाने लगे। प्रबोधयन श्रृंग रवेण चारुणा, भगवान उस श्रृंग में गाते हुए से बोलते होंगे और उनका नाम रख करके अपने मित्रों का, तो कितना सुंदर लगता होगा। सुखदेव गोस्वामी उसको चारुणा रवेण कहा, स्वाभाविक ही अपनी मृत्यु से मरे हुए पशु के, गाय के सिंह को लेकर बजा रहे, छोटे छोटे सिंह, और सोने से मढ़ा हुआ, कई तरह से कलाकारिता पूर्वक सजाया गया था सिंह। तो सिंह और बेंत गायों को धमकाने के लिए, बछड़ों को धमकाने के लिए, पीटने के लिए नहीं, केवल दिखाते थे कि, तो बेंत्र विषाण सिंह और बेणु बांसुरी ये लेकर के चले, और भोजन की सामग्री बेंत में ऐसे लटका लिए थे पीछे, अपना भोजन वहां करना है तो पीठ पर लटका लिए थे बेंत। भगवान जब गाय पालन करने चले हैं तो वास्तव में गोपाल बने हुए, कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, वन में भोजन करेंगे, अभी घर में इतना जल्दी भोजन नहीं कर सकते थे। और ये ध्यान रखना कि भगवान सवेरे सवेरे कभी चाय, शाम को भी कभी चाय नहीं पीते थे। अब तो लोग परिवार के परिवार चाय बनाते हैं और बच्चों को भी देते हैं पीने के लिए, अभी से आदत खराब कर देते हैं। अपने तो भ्रष्ट हैं ही, बच्चों को भी चाय पीने को लेते हैं। भगवान घर पर कुछ नहीं खाए, बच्चों को जगाने लगे। प्रबोधयन श्रृंग रमेण चारुणा, सुंदर सिंह की ध्वनि से बच्चों को जगा रहे। सब सोए थे, समय पर चलेंगे, लेकिन भगवान जगाए। वो तो पहचान गए कि कृष्ण का स्वर है, कृष्ण का सिंह बज रहा है। बस वो उठे, हम जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे। तो उनके माताओं ने भी बहुत जल्दी, रुको रुको जल्दी जल्दी, वो भोजन तैयार करके और उनको देने लगी। सबके घर से मिठाई, दही, दूध, ये सब गान बान करके बच्चों को देने लगे। वो जल्दी में थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बछड़े ले जाना है, बछड़े ले जाना है। और पहले से कृष्ण ने नहीं कहा था कि भोर में ही सब बछड़े ले जाएंगे, आज गौएं कुछ देर से दुही जाएंगी। तो सब अपने अपने बछड़ों को लाने लगे कृष्ण के बछड़ा में मिलाने के लिए। और श्री कृष्ण जब निकले तो बछड़े निकाल करके अपने घर के, तो कृष्ण के बछड़े असंख्यात ही कह रहे हैं सुखदेव सिंह तीसरे श्लोक में, असंख्यात, असंख्य बछड़े। असंख्य का क्या अर्थ हुआ? असंख्य का अर्थ है जिसकी संख्या नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद जी इस पर प्रपोर्ट लिखते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ है हंड्रेड, सहस्त्र, मतलब सात सहस्त्र, लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी इसको लिमिट नहीं किया जा सकता। इसका कारण है कि जब भगवान ने बछड़ा चरा रहे थे तो देवता भी बछड़ा बन बनकर सब आ गए भगवान के साथ रहने के। मानुष हो तो वह रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मंझार। रसखानी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे पशु बनाना तो नंद महाराज के गायों में एक बना देना, मैं चरता रहूंगा, कृष्ण चराएंगे। तो जितने भी भक्त भगवान कृष्ण के थे वो सब बछड़ा बन गए थे भगवान की कृपा से, और वे चल रहे थे चरते। इसलिए असंख्यात ही, श्रील प्रभुपाद जी यही बात कहते हैं, असंख्य असंख्य बछड़े थे। तो जगा रहे थे श्री कृष्ण उनको और बछड़ा हाँक रहे थे धीरे धीरे। बछड़े बहुत बहुत जल्दी निकल कर नहीं चल रहे थे, आगे किए बछड़ों को, चल रहे थे धीरे धीरे। सभी घरों से निकालते गए अपने 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 साथियों को, और वे लोग अपने अपने बछड़ों को ला ला करके कृष्ण के बछड़ों में मिलाते थे। इसके द्वारा हरिश्वर जी ने कहा है कि भगवान के गोकुल में अपने गोकुल को मिला देना चाहिए। तो भगवान की इंद्रियों को ही सुख देने में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। गोकुल माने इंद्रिय कुल, ये बछड़े जो हैं वो गो हैं, गाय हैं, और कुल माने समुदाय। तो बछड़े अपने अपने गाय के समुदाय को, बच्चों को भगवान के गोकुल में मिला रहे, बछड़ों के समुदाय में। ये संदेश है कि अपने इंद्रियों की सेवा में नहीं रहना चाहिए, अपने इंद्रियों से भगवान के इंद्रियों की सेवा करनी चाहिए। यह भाव विनिर्गत वत्स पुरह सरोहरि, यह हरि क्यों कहा जा रहा है? इस समय वे भोर में जगे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति जो उनको भोर में देख रहा है, चाहे उनकी ध्वनि सुन रहा है, उसके चित्त को पूर्णतः हर लेते हैं, इसलिए वे हरि है। सबका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। भगवान कृष्ण का हरि नाम ही मुख्य रूप से आया हुआ है, इसलिए महामंत्र में हरि हरि ही ज्यादा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरि हरि से हरे। तो विनिर्गतो वत्स पुरह सरो हरि, वत्स पुरह सरह, वत्स पुरह सरह का अर्थ है कि वत्सा वत्स बछड़े जिनके पूरा सरह आगे चल रहे थे वे हरि। विनिर्गत विशेषण निर्गत, और दिन की अपेक्षा आज विशेष रूप से निकले अपने घर से और गोकुल से, मतलब ब्रज से, बस्ती से, गांव से विशेष रूप से निकले। विनिर्गत समुत्थाय का अर्थ है श्रीपद सनातन गोस्वामी जी करते हैं, जब भगवान पलंग से उठे तो समुत्थाय सम्यक उत्थाय, सम्यक उत्थाय का अर्थ है कि खूब अच्छी तरह से आंखें खोले, इसके बाद अपने मुख को धोए, कुल्ला के धोए, सजाए अपने को भोर में ही दीपक के प्रकाश, इसको समुत्थान कहते हैं। और तुरंत रात्रि का वस्त्र बदले या स्नान किए, उसके बाद स्नान तो नहीं किए होंगे अभी, इतना नियम के पक्के नहीं है बचपन में लेकिन समुत्थाय हमें ये बात कहेगा कि मुख श्रीमुख प्रक्षालन किए, दर्पण में अपने मुंह को देखे और उठे और बस चलने के लिए ही कहने लगा, चलना है चलना है चलना है। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सिग्वेत्र विषाण वेणवः, तेनैव साकं उनके ही साथ में, कृष्ण के साथ में हो लिए सहस्रशः पृथुका, बच्चों को पृथुका कहते हैं। पृथुका का यह अर्थ कुछ और भी होता है, जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो थोड़े मोटा रहते हैं इसलिए उनको पृथुक कहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उस समय किसी बच्चे को पोलिया सोलिया नहीं होता था कि वे दुबले हो जाएं और हो जाएं, पृथुका। अगर उत्तर प्रदेश में बच्चों को गदेला कहते कृष्ण, तो पृथुका सहस्र सह, सहस्रो सहस्रो बच्चे अपने अपने घर से निकलकर तेनैव साकं विनिर्ययुः, नीचे की क्रिया, कृष्ण के साथ ही निकल चले ब्रज से। तेनैव साकं कृष्ण के साथ ही, बछड़े तो बछड़े में मिल रहे थे लेकिन बच्चे आया करके कृष्ण के साथ खड़े होते थे, कृष्ण को देखते थे सवेरे सवेरे, कितनी सुंदर उनकी मंगला आरती होती होगी। भगवान को देखना, मिलना, आलिंगन करना और इसके बाद धीरे धीरे चलना, तो दूसरे घर से दूसरे बच्चे निकल रहे हैं और घर से और बच्चे निकल रहे हैं आकर। तेनैव साकं का अर्थ है प्रत्येक बच्चा यही चाहता है कृष्ण के साथ मैं हूँ। बच्चे बहुत होते गए लेकिन तेनैव साकं, साकं का अर्थ है साथ, सह, कृष्ण के ही साथ। तो इस पर यह टीका की गई है कि प्रत्येक बच्चा यही कोशिश कर रहा है कृष्ण से सट करके मैं चलूं, ये कृष्ण को गलबाही देकर मैं चलूं, इस तरह से चल रहा है आगे। और एक दो सखा जो मनसुख आदि थे वे आकर के कृष्ण का वो जो छींका था वो ले लिया अपने पास, कृष्ण को ना ढोना पड़े, वे उनको परिश्रम नहीं देना चाहते थे, केवल बेंत सिंह और वेणु कृष्ण रखे और वे ले लिए संभाल। प्रत्येक बच्चा ही चाहता था कृष्ण के साथ चलूं, कृष्ण के साथ चलूं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि सुखदेव गोस्वामी तो जानते हैं कि सभी बच्चे कृष्ण के साथ नहीं हो सकते हैं, तो तीनों एवं क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों के मन में यह अभिलाषा है कि कृष्ण के साथ मैं चलूं, इसलिए कृष्ण भी जितने सखा है उतने रूप से साथ चल रहे हैं, परंतु प्रत्येक बच्चा को यही अनुभव हो रहा है कि कृष्ण के साथ मैं हूं। इस प्रकार भगवान ने अपना ऐश्वर्य विस्तार किया, माधुर्य में ढका हुआ ऐश्वर्य। तो प्रत्येक बच्चा यही जान रहा है कि कृष्ण के साथ मैं चल रहा हूं, सबको यही अनुभूति हो रही है, इसलिए तेनैव साकं शब्द का प्रयोग किया गया। स्निग्धा और सभी स्निग्ध थे, सभी कृष्ण के परम प्रेमी थे, जिसमें स्नेह हो उसको स्निग्ध कहते, स्नेहवान, कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण को सुख देने वाले ये सभी बच्चे। सुसिग्वेत्र विषाण वेणव, सबके पास बहुत सुंदर सिंह, बहुत सुंदर वेत्र और सुंदर वेणु और सुंदर छींका, चार चीज। सु सब में लगेगा, सुसिक सुंदर छींका और सुंदर बेत्र, सुंदर विषाण, सुंदर वेणु। इतनी सुंदर सुंदर छड़ी थी कि उसको देखते बनता था। छोटे छोटे जितने जितने जितना बड़ा बच्चों का शरीर था उतना ही बड़ा वे छड़ी रखते, छोटी छोटी छड़ी, पतली पतली, या अपने साइज से वो छोटा ही रखे होंगे, इसलिए सुस्त छोटा छोटा छड़ी, छोटे छोटे बछड़ों को हाँकना है, इसलिए छोटी छोटी छड़ी और बहुत सुंदर, और छड़ी में लटक रहा है सीख, सीके या छींके पर लखना का। इसमें से प्राय सभी जानते होंगे कि छींका क्या होता है, रस्सी से बना हुआ होता है, उस पर मटका रखा जाता है चींटी आदि के भय से, चाहे बिल्ली के आक्रमण के भय से, छप्पर में सीलिंग में लटका करके रखा जाता है, चींटियां भी नहीं पहुंच पाती हैं और बिल्ली भी देखती रह जाती है लेकिन नहीं पहुंच सकती। इन बच्चों के लिए बहुत सुंदर रेशमी डोरी से छींके बनाए गए थे स्पेशल सबके लिए, बहुत कठोर रस्सी के नहीं, बहुत सुंदर, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ध्यान करते हुए कहते हैं सुशी, बहुत सुंदर छींके, और बेत्र बेत विषाण सिंह और बेणवा बेणु सबके पास मिला करके बहुत बेणु हो गए हैं, बहुत सुंदर छींके, जहाँ दृष्टि सुखदेव गोस्वामी डालते हैं सब सुंदर 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 सुंदर, एक जगह सु लगा करके, सु का अर्थ सब जगह सु लगाना पड़ेगा, सु का अर्थ सुष्ट सुंदरम, सब चीज बहुत सुंदर था। अच्छा, बच्चों की सुंदरता का वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चों के जो उपकरण है उसकी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने सुंदर हैं, चाहे कृष्ण इसका वर्णन नहीं किए, तो इसका अर्थ है कि वो तो वाणी से परे है, मैं क्या कहूं, वाणी असमर्थ हो रही है इसीलिए उसका वर्णन नहीं कर पा रहे। वे कितने सुंदर, जब उनके पास वो समान इतने सुंदर सुंदर है, तो बच्चे कितने सुंदर है, और कृष्ण तो स्वान स्वान सहस्र परिसंख्यान्वितान वत्सान पुरस्कृत विनिर्जयुर्मुदा, स्वान स्वान सहस्रों परिसंख्यान्वितान, अपने अपने सहस्रों से भी अधिक बछड़ों को कृष्ण के बछड़ों में मिलाते जाते थे। वन में जाने में अब बछड़े अलग अलग चलेंगे ऐसा विचार नहीं था, तो गोपों के गोप बच्चों के बछड़े कृष्ण के बछड़ों में मिल जाते थे, बछड़े भी चाहते थे कृष्ण के बछड़ों के साथ चले, सब यही चाहते थे कि कृष्ण हमको चरावे, कृष्ण हमको हाँके, तो आ करके खुशी से मिलते जाते थे। देखिए कितना अच्छा स्वभाव है, नहीं तो इधर के तो पशु हैं कि एक पशु को देखते हुए मारना और लड़ना चालू करे, लेकिन वे सब आया करके मिलते जाते थे, बच्चे कृष्ण से मिलते थे और उनके बछड़े कृष्ण के बछड़ों से मिलते जाते थे, इसलिए अन्वितान स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान वत्सान पुरस्कृत विनिर्जयुर्मुदा। तो कृष्ण के आगे कहा गया कि कृष्ण के बछड़ों में वे मिलाए, तो इस तरह से वे चले मुदा परम आनंद से, मुदा बहुत प्रसन्नता से चले। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं अनुभव कर रहा था कि ये सवेरे जगा दिया नहीं, क्या जल्दी था, वो तो बहुत आनंद में थे कि इतना जल्दी आज सखा से भेंट हो गई और दिन भर साथ में रहे, बहुत अधिक समय मिला कृष्ण के पास रहने, और कोई पूछ नहीं रहा है कि क्यों इतना जल्दी जग गए, क्यों इतना जल्दी जा रहे, कोई नहीं पूछा, बस वो तो आनंद में थे। किसी किसी दिन तो बच्चे आधी रात के समय ही आते थे नंद बाबा के घर पर, कहते थे कृष्ण समय हो गया चलो 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 चलो, तब तो माता बताती थी यही टाइम है यही समय है जाओ सो सो, तो अभी तो आधी रात हुई है। तो जब वत्स चारण करके आते थे तो उनको नींद नहीं लगती थी, कृष्ण के विरह में वे बड़े दुखी होकर घर जाते थे, तो किसी की नींद 10 बजे उठ टूट जाती थी, किसी 11 बजे, तो दौड़ कर आता था कि समय हो गया सवेरा हो गया चले वन में, ऐसे कृष्ण का साथ मिलेगा। जब भगवान उद्धव जी को ब्रज में भेजे हैं तो श्री गोपियां कहती हैं कि हम जान गए वे क्यों नहीं आते हैं ब्रज में, यही डर बहुरी ने गोकुल आए इसी डर से नहीं आए कि फिर बच्चे आधी रात को जगाएंगे, फिर गाय चराने के लिए भेजा जाएगा, तो अब मथुरा के राजा हो गए तो अब गाय कहाँ से चराएंगे, इसी डर से नहीं आ रहे। और शायद उनको ये भी डर होगा कि गोपियां फिर उनको चोर कहेंगी और फिर जसोदा से बंधवाएंगी पिटवाएंगी, तो इस दुख को सोच करके वो नहीं आ रहे। और उद्धव जी जाकर कह दीजिए अब कोई नहीं बोलेगा, अब तो हम लोगों ने अपने दूध दही को ऐसे रख दिया है कि कृष्ण आवे और खावे, अब कोई नहीं बोलेगा और माँ जसोदा से हम लोगों ने स्वीकृति ले ली है, वो रोती रहती कहती है कि अब नहीं बांधूंगी, अब नहीं पीटूंगी, चाहे कुछ भी करे, एक मटका चाहे हजारों फोड़ दे, कुछ भी करे, अब नहीं बांध, इस तरह से वो कहती। तो बच्चे आधी रात को भी जग जाते थे कभी कभी, तो अपने आप उत्सुक रहते थे कृष्ण के साथ जाए, और आज कृष्ण जब स्वयं जगा जगा कर लेगा रहे तो क्यों नहीं। मुदा मूत शब्द है संस्कृत में, म ह्रस्व उकार और त हलंत, मूत तृतीया में है, मुदा मोद से चले, आनंद से चल रहे। कृष्ण वत्सैर संख्यातैर ज्योति कृत्य स्ववत्स कान चार यंत्र भली लाभीर बिजर हुस्तत्र तत्र च ह। कृष्ण वत्सैर संख्यातैर, कृष्ण के असंख्य वचनों के साथ अपने वचनों को जूथी कृत्य एक जूथ में करके, एक झुंड में करके और सब चल रहे। और चार यंत्र और भलीला भी गांव से बाहर निकले और बछड़ों को चराना चले, बछड़े चरने लगे तो रात भर के भूखे थे तो चरने लगे, तो चार यंत्र चराने लगे और बस इस तरह से घूमने लगे कृष्ण बलराम ये कृष्ण सखाओं के साथ। लेकिन और भलीला भी बच्चे जैसे खेल करते हैं वैसे खेल करते हुए चरा रहे थे, ऐसा नहीं खड़े होकर के और बहुत फिक्र से चरा रहे हो किसी का खेत न चर जाए न हो न। और लीला भी बछड़े चरने लगे और उधर बाल लीलाएं चालू हुई, क्या क्या लीलाएं होती थी उसको सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। बिजरहुष तत्र तत्र ह, ह का अर्थ है कि ह प्रसिद्ध, यह बिल्कुल प्रसिद्ध बात थी, सर्वख्यात बात थी कि बछड़े जब ही चरना चालू करते थे ये लोग खेलना चालू करते थे। जब तक पथ में थे हाँकते हुए ले जा रहे थे, वो भी नाचते गाते हुए जा रहे थे, परंतु बछड़े चरने लगे तो वे लोग खेलने लगे। वन में पहुंचकर सबसे पहले बच्चे वन के अनुसार अपना श्रृंगार करने लगे, कृष्ण का श्रृंगार सब करते थे, इसके बाद अपना अपना श्रृंगार करते थे। फल प्रवाल स्तबक सुमन पिछ धातु भी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अप्य भूषयन, भूषिता अपि अभूषयन। ये बच्चे जब घर से चले थे ऐसे लगता है कि स्नान कराया गया था बच्चों को, बहुत सभ्य समाज था, माताओं ने स्नान जल्दी जल्दी करा दिया था और इसके बाद श्रृंगार किया था सभी बच्चों का कृष्ण समेत। किस चीज से? कांच गुंजा मणि स्वर्ण, घर पर श्रृंगार हुआ था। कांच गुंजा मणि स्वर्ण, गुंजा की मालाएं और मणि और सोना के आभूषण, इनसे घर पर श्रृंगार किया गया था सभी बच्चों का। भूषिता, लेकिन फिर भी अभूषण, वन में वे लगे अपना अलंकार करने। किस चीज से? फल प्रवाल स्तबक सुमन पिच्छ धातु भी, फलों से और वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों से और गुच्छों से, फूल और पत्ता जिस टहनी में हो जिस शाखा में, और फूल बड़ा बड़ा हो कई एक साथ और एक दो पत्ते भी हो तो उसको गुच्छ कहते हैं, स्तबक भी कहते हैं संस्कृत। और सुमन पुष्पों से और पिच्छ पंख से, जैसे मयूर पंख से, और धातु भी वन में जो लाल रंग की मिट्टी वगैरह थी उससे उसको रगड़ करके पत्थर पर और चित्र बनाने लगे गाल पर एक दूसरे ललाट श्रृंगार कर रहे हैं। भूषिता अपी अभूषण घर से चले हैं सोना हीरा से श्रृंगार करके और यहाँ आकर के फल पत्ता और मिट्टी से श्रृंगार कर रहे हैं। हरीश्वरी जी लिखे हैं इस प्रसंग में कि जो महान होते हैं वे मिट्टी में और सोना में भेद नहीं देखते। ये जब भगवान कृष्ण के साधारण भक्तों की दृष्टि में मिट्टी में और सोना में अंतर नहीं होता है तो भगवान के सखाओं में ये भेद कैसे हो। तो सोना से जिसका श्रृंगार किया गया हो आकर के मिट्टी लगाकर श्रृंगार कर रहे हैं। तो गैरिक धातु का श्रृंगार कर रहे हैं। इस एक श्लोक में श्रृंगार का वर्णन है तो ये समझना चाहिए कि बच्चे सबसे पहले कृष्ण का श्रृंगार करना चालू करते थे। अच्छा नहीं लग रहा है कृष्ण सोना चांदी से तो लाकर फल तोड़ करके बांध रहे हैं कहीं और कंठ में लटका रहे हैं फलों की माला फूल की माला और मयूर पंख धारण करा रहे हैं और गुच्छ अस्तबक और चित्र बना रहे थे ललाट में गाल में सब जगह कृष्ण। इसीलिए ऐसा लिखा है सूरदास जी ने कि जब भगवान आते थे ब्रज में शाम को तो माँ यशोदा सबसे पहले ये सब फालतू फल फूल ये सब उतारती थी फेंकती थी और कपड़ा भींगा करके और कृष्ण के वो सब मिट्टी लगाए हुए धातु को पूछती थी क्या बन करके आ गया है। माता को अच्छा नहीं लगता था तो उनका इतना धनी बेटा और जा करके मिट्टी लगावे और इधर उधर पत्ता बांध करके आ उसको सोना बांधा गया सोना का अलंकार पहनाया गया है वो जाकर के वृंदावन में ऐसे आता आभूषण उतार करके रखती थी ऐसा वर्णन है। हीरे की माला उतारती थी सोने की माला उतारती थी रखती थी एक जगह घर में और जो वन माला थी फूल की माला और सब पत्ता होता उसको कूड़ा करकट में फेंकती जाती थी ऐसे फालतू सब ऐसे करती थी। अंग या भूषण जननी उतारती ये पद का पहला लाइन कि अपने कृष्ण के अंग से आभूषण उतारती थी। तो भूषिता अप्य भूषण भूषित थे माताओं के द्वारा फिर भी भूषिता। इस पर हरीश्वर जी एक भाव करते हैं कि किसी व्यक्ति को माता पिता के द्वारा कोई धन प्राप्त हो या उच्च वंश गुण प्राप्त हुआ है तो इसी से उसको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे माता पिता इतने बड़े हैं इसलिए मैं बड़ा हूँ। अपना गुण अर्जन करना चाहिए। माता पिता का तो इनहेरिट किया है तो है ही लेकिन अपना करना चाहिए। तो ये बच्चे अपनी बुद्धि लगा रहे हैं यहाँ पर कि जो माता पिता श्रृंगार किए हैं उससे संतुष्ट नहीं है अपना करेंगे चाहे जो भी अपना हो भले पत्ता हो फूल हो मिट्टी हो लेकिन अपना करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। एक कवि ने कहा है कि पिता की बड़ाई से बच्चे की बड़ाई कोई बड़ाई नहीं है अपना जब किया जाता है तब बड़ा व्यक्ति बनता है करना। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप इतने बड़े रहे थे इससे क्या। एक कवि कहता है कि बाप कितना भी बड़ा हो बच्चा अपने कर्म से बड़ा बनता है। जैसे अगस्त जी समुद्र पी गए और पुत्र है घड़ा के कुंभ के पुत्र है और कुंभ है 4-5 किलो से ज्यादा पानी नहीं पी सकता है। एक घड़ा में ज्यादा से ज्यादा कितने 10 किलो पानी अट सकता है और घड़ा से जन्मा हुआ लड़का समुद्र पी गया। तो अपना होना चाहिए इस गर्व में नहीं रहना चाहिए कि माता पिता बहुत बड़े हैं तो हम भी बड़े हो गए। नहीं उस दृष्टि से बड़ाई होती है लेकिन वही सब कुछ नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के द्वारा किए गए श्रृंगार से संतुष्ट नहीं थे। वो रत्न अलंकार सब धारण किए रहते थे लेकिन ऊपर से और अपने को सुंदर बनाने के लिए या अपनी समझ से और अच्छा लगने के लिए वो ये सब वन के फल फूल आदि से श्रृंगार कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूषिता अपि अभूषयन वो भूषित थे बहुत सुंदर लगते थे लेकिन फिर भी। और एक भक्त कहते हैं कि गोप थे बच्चे थे इसीलिए और जो बच्चे जो होते हैं वो तो ऐसे ही गुणातीत होते हैं, उनके दृष्टि में सोना चांदी और इधर पत्ता में कोई भेद नहीं। सयाना आदमी ऐसे थोड़े करेगा कि सोना का अलंकार लगाया हो और इसके बाद मिट्टी लगा ले, नहीं करेगा। वो बच्चे तो कर रहे थे, और इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि भगवान और भगवान के उन बच्चों को, गोप सखाओं को, अलंकार ये सब प्रिय नहीं थे, प्रिय थे वृंदावन के पत्र पुष्प फल आदि, उससे भगवान श्रृंगार करते थे। और सभी बच्चे फल प्रवाल स्तवक सुमन पिच्छ धातु भी, फल प्रवाल स्तवक सुमन पिच्छ धातु, सात चीज यहाँ लिखा गया है, सात वस्तुओं से अपना श्रृंगार करते थे सभी। जबकि कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता, इसके द्वारा भूषित रहते थे, फिर भी अपना श्रृंगार करते। वन में पहुंचने पर पहली लीला तो ये करते थे, बछड़ा चल रहा है इसका ध्यान नहीं रहता, श्रृंगार करने लगे कृष्ण का या अपना, तो बस होने लगा श्रृंगार। इधर जहाँ पहुंचते थे तो उस पहला श्रृंगार उतार कर कहते थे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसको धारण करना, और माला नहीं बना पाते थे वास्तव में, वैसे ही अपने केस में पत्ता खोस लेते थे या पगड़ी में जैसे तैसे बांध लेते थे। और दूसरी क्रीड़ा क्या करते थे, मुष्णन्तो नोन्य सिक्या दिन ज्ञाता नारा चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दुराद हसन्तश्च पुनर्दधुः। कभी कभी एक दूसरे के छींके को चुपके से ले लेते थे, जैसे मान लीजिए कोई खेल रहा है कहीं रखा है या टांगा है, तो उसके छींके को ले लेते थे चुपके से, और वो बच्चा फिर बाद में ध्यान देता था मेरा कौन ले गया है सामान, वो देने के लिए ही लेते थे, लेकिन हैरान करते थे कौन ले गया, ये ले गया, गाली दे दूंगा, ये करूंगा, बताओ जल्दी, नहीं तो ये प्रतिदिन ये सब चलता था, हमारा कौन लिया, हमारा कौन लिया, हमारा ये सामान था, वो खाने का था, ये था, वैसे सब कृष्ण के लिए ही लाए हैं। वास्तव में परस्पर सबको बहुत प्रीति थी, लेकिन फिर भी खेल में ऐसा होता था। सिक्क्या दिन, सिक्क्या दिन मतलब कोई किसी की बांसुरी चुरा लेता था या बेत या सिक्के सिक्का चुरा लेता था और सिंह, और जब ज्ञातन जब पता लग जाता था कि अमुक लिया है तो वो दूसरे के पास चिक्षिपु फेंक देता था, जब पता लगता था कि इसके पास है तो वो लेकर दूसरे को दे देता था, वहां वो जाता था तो तीसरे के पास दे देता था, ऐसे वे हैरान करते थे और इसी में बड़ा खुश होते थे, और अंत में जब रोने लगता था तो दे देते थे, हंसते हुए दे देते थे, लो लो लो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो खाने के लिए चुरा लेते थे, केवल विनोद करने के लिए, इसीलिए मैं वर्षा ऋतु का वर्णन करना चाहता था। वो सामान को कभी कभी दूर फेंक देते थे, फिर देते थे पूरा तंग करके, या कभी कभी बच्चा कहता था कि हमको दे दोगे तो मैं आधा सामान उसमें से दे दूंगा तुमको, उनको लेना नहीं था लेकिन हसंतश्च पुनर्दधुः, हंसते हुए उसको दे देते थे, ये लीला चलती थी, सामान ले लेते थे हंसते हुए देते थे। और यदि दूरम गतः कृष्ण वनसो भेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कभी दूर चले जाते थे तो बच्चे उनको देखते थे, तो बच्चों में प्रतियोगिता थी कौन कृष्ण को आगे छुएगा, तो अहम पूर्वम मैं पहले छू लूंगा, मैं पहले छू लूंगा, और दौड़ते थे और जा जाकर के कृष्ण का आलिंगन करते थे, मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा। और यदि शब्द से यह ध्वनित हो रहा है कि श्री कृष्ण प्रायः सखाओं से दूर नहीं जाते थे, सर्वदा उनके साथ ही रहते थे, कभी कभी दूर निकल जाते थे वन की शोभा देखने के लिए, बहुत दूर नहीं, थोड़ी दूर, तो कृष्ण को न देख करके बच्चे व्यग्र हो जाते, अथवा बच्चों की व्यग्रता को उनके सुख को बढ़ाने के लिए कृष्ण कभी कभी दूर होते थे। यदि शब्द पहले लगाया जा रहा है कि यदि दूरम गतम, यदि दूर जाते थे, इसका अर्थ है कि दूर जाते नहीं थे, बहुत कम ऐसा अवसर था जब दूर जाते थे। तो भगवान को छूने के लिए, कृष्ण को छूने के लिए बच्चों में होड़ लगती थी, सामने देख करके दौड़ते थे कि अहम पूर्वम, मैं छूंगा दौड़ते थे। और कृष्ण उनकी रुचि रखने के लिए जितने बच्चे होते थे उतने रूप में हो करके और मिल जाते थे, और बच्चा कहता था मैं छुआ हूँ पहले मैं छुआ हूँ, वो कहता था पहले मैं छुआ हूँ, और वास्तव में सब पहले थे, पीछे तो कोई नहीं था। भगवान इस तरह करते थे, अहम पूर्वम संदृश्य रे मिरे। तो कृष्ण को संस्पृश्य, कृष्ण को सम्यक छू छू कर इस तरह से रमण कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। संस्पृश्य शब्द है, सम्यक स्पृश्य, संस्पृश्य संस्पृश्य, भगवान को सम्यक स्पर्श करके मतलब आलिंगन में ले करके, बताओ कृष्ण मैं तुमको छुआ कि नहीं पहले, तो सब जगह कृष्ण कहते थे तुम छुए हो सबसे पहले, और दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता था, केवल उसी बच्चा को सुनाई पड़ता था तुम पहले स्पर्श किए हो, तुम पहले स्पर्श किए, सब कहते थे पहले मैं छुआ हूँ, पहले मैं छुआ। इस तरह से भक्तों में होड़ होनी चाहिए, पहले मैं भगवान के मंगलारती में पहुंच जाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं श्रृंगार करूंगा। इधर तो सब पीछे हटते हैं, ये होड़ होना चाहिए। इस प्रकार यह दिव्य कंपटीशन है, वास्तव में भजन में आगे रहना चाहिए, आलस्य में और लोक चर्चा में पीछे। अहम पूर्वम, मैं पहले, ठीक है, अहम पूर्वम, नत्वम, तो यहाँ तो नत्वम नहीं है, लेकिन जब असुर लोग अमृत का कलश छीन कर भागे भगवान धन्वंतरी के हाथ से, तो पीने के लिए ठीक ऐसा ही शब्द बोलते हैं, अहम पूर्वम, नत्वम, तुम नहीं, लोग झगड़ा करने लगे, मैं पहले पीऊंगा, इतना मेहनत करके मर गया, तुम तो केवल सांप को पकड़ कर खड़ा था, तुम जोर नहीं लगा रहा था, पहले मुझे पीने दो, और बाप और बेटा में झगड़ा हो रहा था, संबंधियों में भी झगड़ा चल रहा था। तो प्रतियोगिता, संस्पर्धा ये स्वाभाविक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी संस्पर्धा है, कंपटीशन है, लेकिन वह कृष्ण पर सेंटर्ड, पहले मैं कृष्ण को छूंगा, पहले मैं छूंगा, इस तरह से कह करके दौड़ते थे। कितना बड़ा भाग्य था उन बच्चों का, और उनको इस तरह सुख देने के लिए श्री कृष्ण कभी कभी दूर होते थे। ऐसे साथ में चल रहे हैं तो क्या कृष्ण को आलिंगन करेंगे, उसमें उतना आनंद नहीं आता, जब भूख लगी रहती है तब भोजन का आनंद आता है। तो भगवान थोड़ा सा दूर होकर के और इनको आलिंगन का सुख देना चाहते, इसलिए दौड़ करके बच्चे ऐसे पकड़ लेते थे अखबार, पहले मैं छूंगा, और सभी पहले रहते थे, कोई पीछे नहीं। यही है भगवान की भगवत्ता, समय समय पर वे अपना ऐश्वर्य प्रकट कर देते थे, जितने बच्चे होते थे उतना बन करके खेलते थे। परंतु वह केवल एक ही बच्चे को दिखाई देते थे, कृष्ण मेरे साथ हैं, बाकी सब जानते थे मेरे साथ हैं। इसलिए कभी कोई निराश नहीं हुआ। तो मान लीजिए 10 बच्चे अगर दौड़े कृष्ण को छूने के लिए, और जो नहीं छू पाएगा तो हताश होगा, इसलिए भगवान उसके पास भी प्रकट हो जाते थे। अथवा यह अभी भाव है कि बारी बारी से सबको आलिंगन में लेते थे, संस्पृश्य, जिन भगवान को अलक्ष कहा जाता है, अलक्ष निरंजन क्या क्या उपाधि देते हैं, उन्हीं भगवान को अपने अखबार में भर भर करके लड़के कहते हैं, पहले मैं छुआ हूँ, पहले मैं छुआ हूँ, पहले मैं छुआ हूँ, या पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, इस तरह होड़ करते थे। यह वृंदावन धाम भगवान का घर है, वास्तव में यहाँ उनका निवास है। यहाँ भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान को देखना और गाना, खिलाना, झूला झूलाना, बस यही यहाँ का काम है। वृंदावन के बाहर भगवान को अभी खोजना पड़ेगा कि है कि नहीं है, कहाँ गए, लेकिन यहाँ खोजना नहीं है, यहाँ केवल देखना है और अखबार में भरना है। एक बहुत बड़े संत ने इस बात को कहा था एक बार कथा में, कि वृंदावन में कृष्ण को खोजना नहीं पड़ता, दौड़ दौड़ कर छूना होता है। यदि दूरम गतः कृष्ण वन शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, इस प्रकार संस्पर्श, सम्यक स्पर्श करते थे कृष्ण का, और रे मिरे रमण करते थे, आनंद में रहते थे। रेमिरे का अर्थ परम आनंद प्राप्त करते थे, और रेमिरे शब्द यह भी बता रहा है कि इसी कर्म में सबसे अधिक आवेश था बच्चों को, कृष्ण के साथ चलने में, कृष्ण को छूने में, कृष्ण के साथ बातचीत करने में, इसी में रमे रहते थे। तुष्यंत च रमंति च, आवेश सिद्ध हो रहा है। केचिद वेणुन वादयन्तो ध्मान्तः शृंगारि केचनाम केचिद भृंगैः प्रगायन्तः कुजन्तः कोकिलैः परैः, हजारों हजारों बच्चे थे इसलिए कोई कोई बांसुरी बजाते थे, और एक साथ कई बांसुरी। केचिद वेणुन वादयन्तो, कुछ बच्चे एक ही साथ बांसुरी बजाते रहते थे, तो कोई सिंह बजाते थे, कोई भावरों के साथ गाते रहते थे, भौरे जो पुष्पों पर भनभन 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 गाते हैं, उनके साथ वे स्वर में स्वर मिलाकर गाते थे, और कोई कोयलों की बोली का अनुकरण करते रहते थे, कुहू कुहू करते रहते थे उनके पीछे। बछड़ा चराना तो एक नाम भर का काम था, असली काम यह था खेलना, वेणु बजाना, सिंह बजाना, भौरों के साथ गाना, कोयलों के साथ गाना, बिछाया भी प्रधावंतो, वी का तो पक्षी, आकाश में पक्षी ऐसे उड़ते थे पंख फैला करके जहां तहां, तो बच्चे उनके छाया के साथ दौड़ते थे कोई कोई यह खेल है, ऊपर से पक्षी की छाया पड़ रही है तो वो भी उसी रफ्तार से भागते थे इधर इधर से उधर, पक्षी भी जान बुझ करके जहां मैदान रहता था वहीं उड़ते थे, पक्षी की छाया के अनुसार चलते थे इधर से उधर ऐसे। हम भी देखे हैं इस तरह से बच्चे चलते हैं कभी पक्षी की छाया में, लेकिन वो पक्षी बहुत तेज बढ़ जाता है इसलिए थोड़ा ही अनुकरण कर पाते। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो आकाश में से घूमते रहते हैं, घूमते रहते, तो इस तरह से अनुकरण करते थे। विछाया गच्छन्तः साधु हंस कहिए, और कुछ लोग हंस का ही हंस के साथ है सुंदर चाल से चलते थे पृथ्वी पर भी और जल में भी, धरती पर और जल में हंस के साथ चलते थे, अथवा जल में हंस तैर रहा है तो यह स्थल पर ही हंस जैसे चलते थे। बकाय रूप विषमतश्च, और कहीं कहीं बगुले ध्यान में बैठे रहते थे तो उनके साथ ये भी बगल में बैठ जाते थे आंख बंद करके, बगुला जैसा ध्यान करते, बको ध्यान हम बहुत प्रसिद्ध है, विद्यार्थी को बको ध्यान होना चाहिए, मतलब बगुला जैसा ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई में। तो बकय उपविशंत, बहुत लड़के थे, एक दो नहीं इसलिए कुछ कुछ सैकड़ों लड़के तो बगुला के साथ, ये बगुलों के साथ बैठे रहते, उपविशंत, उपकार से निकट, विषंतकार से बैठना, प्रवेश करना, बगुले जैसे खड़े रहते थे वैसे चुपचाप ये भी ध्यान करते थे, सीखते। नृत्यंतश्च कलापी भी, और कलापियों के साथ मयूरों के साथ नाचते थे कोई कोई खींचित सब जगह लगेगा। कुछ लोग मयूरों के साथ नाचते रहते थे। ये जुगपत एक साथ ये सब हो रहा है। विकर्षंत किस बालान, और कभी कभी बानर के बच्चों की पूछ पकड़ कर खींचते तो वो बानर के बच्चे तो रोने लगते थे आय 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 करके और उनकी पूछ पकड़ कर खींचते। बानर के बच्चे बहुत डरपोक होते हैं तो वो पूछ पकड़ने पर बहुत चिल्लाने लगते हैं, अपने माँ को बुलाते हैं चाहे अपने पिताजी को बुलाते हैं, जो भी आवाज ऐसी करते हैं। तो विकर संत किस बालान आरोहंत पैर दुर्मय, और कोई कोई बच्चे उनके पूछ पकड़े पकड़े, बहुत कड़ा नहीं पूछ पकड़े पकड़े और उनके साथ वृक्ष पर चढ़ जाते। विकर संत किस बालान आरोहंत पैर दुर्मान, भगवान के समय से ही वृंदावन में बानर रहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन उस समय चश्मा नहीं लेते थे इतना फल फूल भरा था कि वो बेचारे दूसरों का सामान नहीं लेते। अब तो लोग अपने घरों में सामान भरे हुए हैं, देते नहीं है, इसीलिए वे छीनते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वास्तव में उनका कुछ जब तक छीना नहीं जाएगा तब तक वो केला सेला देते नहीं है बानरों, इतने कृपण होते हैं। वृंदावन आने पर पहले प्लान करके आना चाहिए कि ब्रजवासियों को, बानरों को, कबूतर को, मयूरों को इतना पैसे का हमें चना देना है।